ओम शांति। बाबा की तपोभूमि वरदानी भूमि में तप करना अच्छा लगता है सबको, हाँ भाइयों को, प्यारे ब्रह्मा बाबा मम्मा और दादियों की तपोभूमि। कर्म भूमि भी, कौन सी तपस्या करते हैं, भक्ति में तो बड़े कठिन व्रत उपवास करते हैं, देह दमन की तपस्या करते हैं। बाबा ने हमें तपस्या का सहज मार्ग बताया, देहाभिमान मन की चंचलता का मूल कारण है। तो बाबा ने हमें मूल बातें सिखाई कि हमें दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं, देहाभिमान छोड़ने की आवश्यकता। देह अभिमान में रहते हैं तो फिर और देहधारियों से भी अटैच हो जाते हैं, दुनियावी चिंतन में मन लग जाता है। इसलिए बाबा बार बार साकार मुरलियों में आत्मभिमानी बनने की बात करते हैं। और आत्मभिमानी बनने की भी सहज विधि है, वो देह को कष्ट देते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, लेकिन बाबा ने सिंपल मार्ग बताया कि देह अभिमान को छोड़ना है तो देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना, खुद को आत्मा समझना है। तो हमारी पहली तपस्या है खुद को शरीर से अलग आत्मा समझना, बार बार ये महसूस करें कि हम शरीर से अलग आत्मा है, भल शरीर में रहते हैं पर शरीर से अलग है। जैसे इस हॉल में बैठे हैं पर हमें क्लियर है ना कि हॉल अलग है, हम अलग है। कुर्सी सोफा पर बैठे हैं हमें स्पष्ट है कि कुर्सी अलग है, हम अलग हैं। वस्त्र हमने पहने हैं पर स्पष्ट है कि वस्त्र अलग है, हम अलग हैं। और गहराई से ये महसूस करना है कि शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। शरीर तो मिट्टी है, तत्वों से बना है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, चैतन्य शक्ति हूं। शरीर तो जड़ है, आत्मा के कारण कर्म चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। मैं आत्मा चैतन्य हूं। तो इसको हमें रियलाइज करते रहना। द्वापर युग से फिर भी भगवान को याद करने का अभ्यास तो रहता है, पर खुद को आत्मा समझने का अभ्यास नहीं। इसलिए हमें खास अभ्यास करते रहना है। जिस देह को मेरा मेरा समझते रहे, उस देह भान से ही बाबा ने अलग किया हमें। हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करना है, हर क्षण शरीर से अलग अपने को आत्मा समझना है। कितनी बड़ी साधना है, एक क्षण भी शरीर से अलग नहीं हो सकते, फिर भी अलग अपने को समझना है। तो बाबा ने प्रथम लेसन ही ऐसा दिया जो हम जाग गए। पवित्रता का फाउंडेशन पक्का हो गया। हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। आत्मा स्मृति में रहते हैं। मुरली में देखो, ब्रह्मा बाबा ने जो चिंतन किया, जो अभ्यास किया, जो कर्म किया, वो ही तो मुरली में आता है। मुरली में ब्रह्मा बाबा दिखते हैं ना? रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते, कितना पक्का बाबा करते। दैहिक भाव, लौकिक भाव खत्म हो जाना चाहिए। बाप ब्रह्मा मुख से समझाते हैं, तुम बच्चे कानों से सुनते हो। आता है ना मुरली? हमें भी ये अभ्यास करना है। शरीर को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ भी रखना है, परंतु शरीर के अभिमान में नहीं आना है। पवित्रता का पहला स्वरूप स्वच्छता है। बाबा ने हमारा जीवन कितना स्वच्छ बना दिया। ज्ञान नहीं होता है तो घर में एक ही टॉवेल से सब नहाते रहते हैं, एक ही साबुन यूज करते। बाबा ने हमें कितनी स्वच्छता बताई कि भाई हर एक का अपना टॉवेल अलग हो, साबुन अलग हो, खाने के बर्तन अपने अपने हो, अपनी अपनी अलग बेडशीट हो, उड़ने का हो। ये स्वच्छता बाबा ने सिखाई, क्योंकि अल्टीमेट हमारा लक्ष्य तो देवता बनना है और देवताएं नेचुरल आत्माभिमानी है, पर वो साधना अभी करनी, यहां करनी। यहां हम विशेष अभ्यास भी करते हैं। आज भी बाबा ने कहा ना, अमृत वेला सबसे अच्छा है। शाम को भी अभ्यास करते हैं, विशेष अभ्यास। बाकी तो सारा दिन कर्मयोगी बनकर कर्म करते हैं। तो स्वच्छ भी रहना है, व्यवस्थित भी रहना है। बाबा कहते हैं ना, देवताओं जैसी रॉयलिटी हो, प्यूरिटी की पर्सनालिटी हो। ऐसा नहीं कोई मैले कपड़े पहनने हैं, नहीं, स्वच्छ कपड़े, व्यवस्थित कपड़े हो, परंतु आत्माभिमानी बनकर करना है। बाबा ने हमारा जीवन सादा, सरल और सात्विक बना दिया, क्योंकि शरीर को चलाने के लिए भोजन भी करना है, वैसे तो बाबा ने हमें अल्टीमेट फाइनल प्रोग्राम क्या दिया है, वापस घर जाना है, शरीर छोड़ना है, आत्मा को घर जाना है, पर शरीर को संभालना भी है, क्योंकि शरीर द्वारा ही तो पुरुषार्थ करना है। पर बाबा ने हमारा भोजन सात्विक बनाया, शाकाहारी, स्वच्छ, सात्विक भोजन हम करते, रस और स्वाद में नहीं जाना है, क्योंकि जितने इंद्रिय रस ज्यादा होंगे वो खींचेंगे हमें, बुद्धि बार बार शरीर में जाती रहेगी। ज्ञान नहीं था तो इंद्रिय रसों में डूबे रहे, आंखों से देखने का रस, कौन कहां जाता है, किससे मिलता है, क्या बात करता है, हमारा कोई मतलब नहीं तो भी आंख भी चली जाती है, गर्दन भी घूम जाती, कहां गए, किससे मिले, क्या बात कर रहे हैं। तो ये देखने का रस, सुनने का रस, तेरी मेरी दुनिया भर की बातें करते रहते हैं। पहले लौकिक दुनिया में थे, लौकिक मित्र संबंधियों की बातों में जाते थे, अब अलौकिक परिवार में आए तो यहां तेरी मेरी करते हैं। जब व्यर्थ बातें करते हैं तो कितना अटेंशन से सुनते हैं, बताओ बताओ क्या बात है। आंखें भी बड़ी हो जाती, कान भी सीधे हो जाते। मुझे तो पता ही नहीं, बताओ फिर से क्या हुआ। जैसे वो व्यर्थ बात सुने बिगर देवता नहीं बन सकेंगे। इतनी रुचि लेते हैं तो देखो इंद्रिय रस हो गए। जो सुनेंगे उस पर मन भी चलेगा और मन में चिंतन चलेगा तो मुख से भी किसी के आगे वर्णन हो जाएगा। पता है तुमको ये हुआ वो हुआ, दूसरे को सुनाएंगे। तो बुद्धि उसमें चली जाती है, खाने का रस खाऊं खाऊं होता रहता है घड़ी घड़ी। आज ये खाएंगे वो खाएंगे, रस और स्वाद में बुद्धि जाती है। बोलने का रस, इसलिए भट्टी में कई परेशान हो जाते हैं क्योंकि साइलेंस में रहना होता है। हमें स्व में आनंद आना चाहिए, अपने अलौकिक ज्योति बिंदु स्वरूप, हमें अपने दिव्य स्वरूप में आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। देखो भक्ति में भी कहते हैं ना, निजानंद स्वरूपानंद आत्मानंद। पूछो अपने आप को, अपने में आनंद आता है? नहीं तो फ्री बैठे हैं, कोई काम नहीं है, पर अंदर अंदर राह देखते रहेंगे कोई आवे तो बात करे। बाबा कहते हैं ऐसे ही बैठे हो तो भी अपनी ऊंची आत्म स्थिति में बैठो, अपने स्वरूप में आनंद हो। तो इन इंद्रिय रसों में आत्मा देखो लिप्त हो गई और कोई ग्रस्ती नहीं है, तो बाबा कहते हैं इंद्रिय रसों की ग्रस्ती है। इसलिए जितना हमारा ब्राह्मण जीवन योगी जीवन सादा सरल और सात्विक होगा तो बुद्धि शरीर में कम जाएगी। भाई अब हम फैशन नहीं करते हैं, पर सफेद कपड़े में भी कहीं फैशन करते कि भाई इसमें क्या फैशन हो सकता है। अनुभव है ना, नए कपड़े भी जिस दिन पहनते हैं उस दिन चार बार आईने में देखते हैं ना, तो देखो बॉडी कॉन्शियस तो बनते हैं ना इसके कारण। इसलिए बाबा ने सफेद यूनिफॉर्म पहनाया, चलो भाई नहीं तो माताएं ढूंढती रहती है, मैचिंग नहीं मिलता है साड़ी का, मैचिंग नहीं मिलता है ब्लाउज। हाँ, तो बाबा ने हमारा जीवन पवित्र योगी बना दिया। अब निमित्त लौकिक के कारण कोई प्रसंग पर कुछ पहनते भी हैं, पर हमारी अपनी रुचि नहीं है, है ना? हमारा अपना इंटरेस्ट नहीं है, तो बॉडी कॉन्शियस नहीं बनते हैं। खुद को वैराग्य हो, दिनचर्या जितनी अंतर्मुखी और सात्विक होगी तो आप देही अभिमानी बन सकेंगे। अगर दिन भर बहिर्मुखी है तो जब आप विशेष योग अभ्यास करने बैठेंगे तो मन और बुद्धि को समेटना मुश्किल हो जाएगा, मेहनत लगेगी, क्योंकि सारा दिन बहिर्मुखी रहे। इसलिए हर घंटे एक मिनट बाबा को याद करने का अभ्यास क्यों करते? ताकि कर्म में खो न जाए, बाबा से डिस्कनेक्ट ना हो जाए। बार बार एक सेकंड बाबा के पास जाते हैं तो निराकार की याद से निराकारी स्थिति बन सकती है। देहधारी देवात्मा हो, धर्मात्मा हो, महात्मा हो, ज्ञानी हो, योगी हो, कोई भी हो, देहधारी की याद देहाभिमान में ले जाती। इसलिए बाबा का पहला आदेश क्या है? देह सहित देह के सर्व धर्म संबंध को भूलो, एक मुझे याद कर। ठीक है, इस दुनिया में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो तोड़ निभाना है। बाबा कहता है ना, तोड़ना नहीं है। आज भी कहा ना, सन्यासी तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, तुमको तो घर में रहना है पर बुद्धि से समझना है कि मुझे इसमें रहते हुए न्यारा रहना। घर में रहते भी हम तो कमल फूल हैं, पवित्र योगी हैं हम, गृहस्थी नहीं हैं हम, तो ट्रस्टी हैं। तो आपका बाबा से योग लगा रहेगा और आत्माभिमानी रहेंगे, कहीं भी फंसेंगे नहीं। अलौकिक परिवार में भी याद रखना है, हम अलौकिक है, यहां लौकिकता नहीं लानी है। भाई वहां से निकले, यहां थोड़ी फंसना है। कहते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर पर लटक गए तो क्या फायदा है? बाबा ने ये परिवार, ये संगठन हमें किस लिए दिया है? कि हम मिलकर संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करें, हम मिलकर विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करें, बाकी हमारा पर्सनल कोई रिलेशन नहीं है। हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। तो अलौकिक परिवार में भी अलौकिक बनकर चलना है। तो आप बहुत जल्दी आत्मभिमानी स्थिति में स्थित होंगे। हमें स्थिति बनानी है, सिर्फ स्मृति में नहीं रहना है। आत्मभिमानी स्थिति माना अपनी अनादि शुद्ध स्थिति में स्थित रहना। हमारे अनादि गुण कौन से हैं? शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। इन सात गुणों का स्वरूप बनकर जीना, कर्म करना, तो कहेंगे आत्मभिमानी स्थिति। जिस क्षण क्रोध आता है मीन्स देह अभिमानी बन गए। रावण के माध्यम बन गए। हमें तो बाबा का माध्यम बनना है ना। हमें अपने द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना है। जिस क्षण अहंकार आया मीन्स देही अभिमानी, तभी तो देहधारी का देह का आकर्षण हुआ। खुद के ही शरीर को भूलना है, औरों के शरीर में बुद्धि लगाने की तो बात ही नहीं है ना। इसलिए अगर दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं है, अपवित्रता है, इसका मतलब आत्मभिमानी नहीं है। ब्राह्मण बनने के बाद भी जो दैहिक आकर्षणों में रहते हैं वो पहला पाठ ही नहीं पढ़ सकते। पहला पाठ कौन सा है? आत्मभिमानी बनने का। और अगर ये फाउंडेशन कच्चा है, ये साधना कच्ची है आत्मभिमानीता की, तो संस्कार परिवर्तन नहीं हो। इसलिए इस पाठ को, इस साधना को, इस अभ्यास को हमें बहुत पक्का करना है। बाबा कहते हैं कि ये साधारण स्वरूप छिप जाए, मेरा ज्योति स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाए। भाई हीरा धूल में मिल गया तो प्रकाश नहीं दिखता है, पर साफ करो तो चमकता है, क्योंकि वो है ही प्रकाश स्वरूप। हम है ही ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। देहभान के कारण हमारा ज्योति स्वरूप छिप गया, इसलिए देहभान की मिट्टी हटाते रहना है, क्योंकि वो रोज रोज चढ़ जाती है। देह में रहना, देह द्वारा हर घड़ी कर्म करना, देहधारियों से रहना, जीना, कारोबार करना, तो कहीं न कहीं देहभान की मिट्टी मन बुद्धि पर चढ़ जाती है, तो हमारी चमक कम हो जाती है। रोज झाड़ू पोछा करते हैं तो भी कहीं ना कहीं कोने में धूल मिट्टी कचरा जम जाता है, तो कहते हैं हर मास अच्छी तरह सफाई की। रोज झाड़ू पोछा करते हैं फिर भी क्यों करनी पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं नीचे धूल मिट्टी लग जाती है। ऐसे रोज हम क्लास करते हैं, योग करते हैं, फिर भी दो चार मास में भट्टी करते हैं। बाबा ने ये भट्टी के प्रोग्राम क्यों बनाए, ताकि फुर्सत निकाल कर साइलेंस में बैठकर खुद को देखें। वहां तो रोज क्लास करके भागते हो ना जल्दी जल्दी, हाँ दीदी नौकरी पर जाना है, घर में काम है, दौड़ते हैं, है ना, वहां नहीं फुर्सत है। तो बाबा ने भट्टियों के प्रोग्राम शुरू से बनाए, ताकि हमारे मन बुद्धि में कहीं भी देह अभिमान का, अहंकार का, नाराजगी का, व्यर्थ का कोई भी कचरा हो तो वो हम निकालते हैं। तो लक्ष्य रखना है साधारण स्वरूप दिखाई न दे, प्रकाश स्वरूप दिखाई। बाबा कहते हैं ना, तुम आत्माभिमानी होंगे, योगी होंगे, कोई ऐसा गंदी वृत्ति से आएगा, कोई चोर आएगा, तो बाबा आपके लाइट स्वरूप का साक्षात्कार करा देंगे, उसको और कुछ दिखेगा ही नहीं। पर वो बाबा हमारा लाइट स्वरूप का साक्षात्कार तब करा सकेगा ना जब देही अभिमानी रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। देखो रात को अंधेरे में दूर से मोटर कार आती है तो क्या दिखाई देता है, दो फोकस ही दिखाई देते हैं ना, मोटर नहीं दिखती है। जिनको गाड़ी चलाने का अभ्यास नहीं वो तो समझेंगे कि शायद दो स्कूटर आ रहे, ऐसे लगेगा, क्योंकि बॉडी नहीं दिखाई देती है ना, मोटर नहीं दिखाई देती है, दो पावरफुल फोकस लाइट दिखाई देते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आत्माभिमानी स्थिति इतनी पावरफुल हो, शरीर दिखे ही नहीं, लाइट दिखाई दे, आपको देखें और आपसे मिलें और वो आत्माभिमानी बन जाए, बाबा उसको याद आए। व्यक्त से अव्यक्त में स्थित हो जाए, आज भी बाबा ने कहा ना, तुम आत्मभिमानी बनकर चलो तो क्या कहा बाबा ने, हवा मिसल उड़ेंगे। कल कहा शायद, कल की मुरली में था ना, कितना लंबा चलो तो भी थकावट नहीं होगी, क्योंकि हम डिटैच है। देखो शरीर पर कितने बैग लो, फलाना टिकना, बहुत चीजें ला दो तो भारी हो जाओगे ना, सब उतार दो तो हल्के हो जाएंगे। इस प्रकार आत्मा ने कितना भारी शरीर धारण किया, पर न्यारा रहेंगे, डिटैच रहेंगे तो हल्कापन महसूस होगा। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मभिमानी स्थिति सेफ्टी की स्थिति, सेफ्टी की स्थिति। हमारी बुद्धि शरीर में नहीं होगी तो देखने वाले की भी बुद्धि शरीर में नहीं जाएगी। आत्मभिमानी स्थिति निर्लेप स्थिति है। आत्मा निर्लेप नहीं है, वो तो ज्ञान है ना सबका, पर आत्मभिमानी स्थिति निर्लेप स्थिति, क्योंकि आप डिटैच रहेंगे, आत्मभिमानी रहेंगे तो कोई बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, फीलिंग नहीं आएगी। देह अभिमान है तो बैड फीलिंग आती, आत्माभिमानी है कोई कैसा भी व्यवहार करेगा आपकी स्थिति बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं अपनी ऊंची स्थिति में स्थित। देखो सुबह आप घर से निकलते हैं, नौकरी धंधे में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, अनेकों से मिलना होता है ना, हर एक अपने अपनी मन की स्थिति के साथ आपको मिलते हैं ना, और हर एक के मन में क्या है, कोई चिंता में, कोई भय में, कोई दुख की फीलिंग में, कोई व्यर्थ सोच में, कोई ईर्ष्या द्वेष में, हरेक के मन की स्थिति आज दुनिया में क्या है, वो वाइब्रेशंस हमारे मन पर टकराते हैं। पर आप आत्माभिमानी होंगे तो उनके वाइब्रेशंस आपको प्रभावित नहीं करें, आप सेफ रहे। ये अभ्यास करके देखो सब। नहीं तो दूसरों के दुख से दुखी हो जाते, कई चीजों से भय लगता है, चिंता होती है, क्योंकि अपने स्व में स्थित नहीं है। बाबा की जीवन कहानी तो पढ़ी है ना सबने, बाबा ने भी आत्मभिमानी बनने का कितना अभ्यास किया था। बाबा लिखते थे, मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा है। यशोदा बाबा की युगल का नाम, धर्मपत्नी का नाम। नारायण आत्मा है, बाबा के बेटे का नाम नारायण था ना। राधिका आत्मा है जो बाबा की पुत्रवधू थी। तो आत्मा का पाठ पक्का करने के लिए बाबा लिखते थे। भई आत्मा का ज्ञान मिल गया, पवित्र जीवन बन गए, पर अभी भी देह संबंध की दृष्टि से देखते हैं एक दो को। देह संबंध के दृष्टि से एक दो पर अधिकार करते रहते हैं। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए बाबा अभ्यास करते थे। हमें भी वो अभ्यास तो पाठ पक्का होगा और आत्माभिमानी स्थिति फाउंडेशन है। आत्माभिमानी स्थिति के आसन पर बैठकर तपस्या होती है। डायरी खोलो, लिखो, अपने परिवार का लिखो, मैं आत्मा हूं। फिर जो आपके परिवार में है सबके नाम लिखो, वो भी आत्मा है। बेटा भी आत्मा है, बेटी भी आत्मा है, जो भी परिवार में है लिखो, वो भी आत्मा है। रोज ये प्रैक्टिस कर दी। बाबा ने हमें सत्य ज्ञान दे दिया, पर अभ्यास तो हमें करना है ना। अभ्यास करेंगे तो स्थिति बनेगी। संगम युग में जो हमें अपने अंदर अलौकिकता लानी है, रूहानियत लानी है, वो इस अभ्यास से होगी। आत्माभिमानी स्थिति से रूहानियत आती। हम ये समझते हैं कि बाबा रोज ये पॉइंट बताते हैं, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद कर। कोई मुरली की पॉइंट पूछेंगे कि आज बाबा ने क्या कहा, और कुछ याद नहीं होगा तो कहेंगे आज बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझकर, क्योंकि वो पॉइंट तो रोज आती है। तो कई समझते हैं कि ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट नहीं है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए बाबा बार बार कहते। पर हम संपूर्ण आत्माभिमानी नहीं बने हैं तो बाबा रोज रोज याद कराते। भाई डायरेक्टर आपको जो एक्शन करने के लिए कहते हैं, जब तक परफेक्ट आप नहीं करो तो वो कहेगा ना फिर से फिर से फिर से करो। तो बाबा भी हमें रोज बार बार कहते हैं आत्माभिमानी बनो। तो तो बाबा भी नेचुरल याद रहेगा। और इसलिए ये प्रैक्टिस करनी है शरीर से हम यहां हैं, मन और बुद्धि से असली घर में रहना। इन आंखों से हम बाहर की चीजें देखते, पर मन की आंख से असली घर को देखना है। असली घर में, असली बाबा के पास मैं अपनी असली ओरिजिनल आत्मस्थिति में रहती हूं। तो वो बार बार याद रखना है। आज भी बाबा ने कहा, ये दुनिया कड़वी है, दुख देने वाली है, गंदी दुनिया है, इससे वैराग्य आना चाहिए। तुम्हें घर जाना है और नई दुनिया में आना है, जहां हम आत्मभिमानी है। आत्मभिमानी बनना माना स्वयं पर अटेंशन, स्मृति स्वरूप और अटेंशन। मुझे इस दुनिया में खोना नहीं है, कर्मों में खोना नहीं है, है ना। कई बार कर्म में इतने गुम हो जाते हैं, ना बाबा याद रहता है, ना आत्मस्मृति रहती है। तो जब से अपने आप को भूले, कर्म विकर्म होने लगे। इसलिए कर्म करते भी स्मृति स्वरूप, मैं कौन, खुद को रियलाइज करते रहो। मेरी ओरिजिनालिटी सत्यता है, पवित्रता है, दिव्यता है। खुद खुद को याद कराओ। बाबा की याद में साइलेंस में बैठकर हम क्या करते हैं, खुद खुद को रियलाइज कराते हैं। सिर्फ रिपीट नहीं कर देना है, फिर कहते हैं बहन जी 5 मिनट में योग पूरा हो जाता है, और क्या बोले, तो बोलना थोड़ी, रिपीट नहीं करना है। रियलाइज कराना है, रियलाइज करो। जो रियलाइज कर लेगा ना कि मैं ओरिजिनली शुद्ध आत्मा हूं, सत्य आत्मा हूं, वो जरूर पुरुषार्थी बन जाएगा कि मेरे अंदर कोई भी विकार का अंश न हो, क्योंकि ओरिजिनली मेरे में विकार थे ही नहीं। मैं पूर्ण शुद्ध सत्य पवित्र आत्मा हूं। इसलिए योग के 2 अभ्यास कहते हैं ना, सेल्फ रियलाइजेशन। दादी जानकी ने क्या सिखाया, 3 बार ओम शांति बोलना माना मैं कौन, मेरा कौन। अगर ये दो रियलाइजेशन पावरफुल है तो मुझे क्या करना है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, मुंझने की बात ही नहीं। जब स्व में स्थित हो जाते हैं, मुझे अपने वर्तमान में स्थित रहना, अपनी रियलिटी में स्थित होना। मेरी रियलिटी क्या है? मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा, बाबा का बच्चा। तो ये हमारे योगी जीवन की मूल बातें हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि बाबा ने हमें मूल सत्य ज्ञान दे दिया। भक्ति में मूल सत्य नहीं जानते हैं इसलिए कितनी फालतू मेहनत करते रहते हैं। आंख बंद करके बैठते हैं, मौन करके बैठते हैं, उपवास करते रहते हैं। बाबा ने हमें सिंपल बताया पर मूल सत्य मुख्य बातें बाबा ने तो हमारे से मेहनत खत्म होगी। हम सही पुरुषार्थ में लग गए। पर चाहिए अभ्यास। बाबा ने सत्य बता दिया पर स्वरूप बनना, स्थिति बनाना तो मेरा कार्य है। इसको हल्का नहीं लेना है। जो धारण करेंगे, लंबे समय का अभ्यास होगा, वो आत्मा के साथ जाएगा। जब आप अपनी स्थिति में बैठेंगे, आपको अपने में ही बहुत न्यारापन भी लगेगा, आनंद भी आएगा। कर सकते हैं सभी? बाबा ने भटकने से छुड़ा दिया ना, सत्य बता दिया, तो बस पुरुषार्थ करना है। तब बाबा ने कल कहा था ना, पुरुषार्थ करने की संपूर्ण भावना होनी चाहिए। ऐसे नहीं थोड़ा बहुत धारण कर लिया, नहीं। बाबा संपूर्ण बनाना चाहते हैं तो हमारा भी लक्ष्य हो संपूर्ण आत्माभिमानी, संपूर्ण योगी। ओम शांति।
स्वरूप में आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप। प्रेम स्वरूप।